लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
यह वेटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर हम आपसे उन सब लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जो तानाशाही, निरंकुश सत्ता और यहाँ तक कि संकट में पड़े लोकतंत्रों के तहत मानव के मूलभूत अधिकारों के लिए संघर्ष करते हुए अपनी जान जोखिम में डालते हैं। आमीन।
नमस्कार श्रोताओं, आज के प्रसारण विषय हैं रविवार ये आराधना विधि चिंतन, भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता हैं फादर संजय दिलीप एक्का, सिस्टर उषा मनोरमा तिर्की और सिस्टर अनुग्रह मिंज। श्रोताओ, मानव अपने जीवन में सत्य की खोज करता है। सत्य का तात्पर्य हमारे लिए उन बातों से है जो अपने में सही हैं, जो हमारे मन को भाती और हृदय के अंतःस्थल में स्थापित होते हुए हमारे संपूर्ण मानवीय अस्तित्व को सुकून प्रदान करती है। सत्य वह है जो अपने में शुद्ध और पवित्र है और अपने इन्हीं दो खास आध्यात्मिक गुणों के कारण सत्य के मिलन और उसे स्वीकार करना हमें पूर्ण संतुष्टि और परम आनंद की अनुभूति प्रदान करती है। सत्य से हमारा मेल हमें विचलित नहीं करता है, वरन हमें अपने आत्मविश्वास में मजबूत बनाए रखता है, जिसके फलस्वरूप हम निडर होकर अपने कार्यों को पूर्ण निष्ठा में पूरा करने को प्रेरित होते हैं। श्रोताओं, पास्का के पांचवें रविवार आराधना विधि चिंतन हेतु लिए गए पाठों का निचोड़ हमें मानवीय जीवन की सत्यता को प्रकट करता है। आइए हम सुसमाचार में प्रभु वचनों का श्रवण करते हुए अपने जीवन में व्याप्त सत्य को देखने और परखने की कोशिश करें। हम मानवीय जीवन के सत्य को जानने का प्रयास करें, क्योंकि स्वयं यीशु हमें कहते हैं कि सत्य तुम्हें स्वतंत्र बना देगा।
मैं सच्ची दाख लाता हूँ और मेरा पिता बागवान है। वह उस डाली को जो मुझ में नहीं फलती काट देता है और उस डाली को जो फलती है छांटता है, जिससे वह और भी अधिक फल उत्पन्न करे। मैंने तुम लोगों को जो शिक्षा दी है उसके कारण तुम शुद्ध हो गए हो। तुम मुझ में रहो और मैं तुझ में रहूँगा। जिस तरह दाखलता में रहे बिना डाली स्वयं नहीं फल सकती, उसी तरह मुझ में रहे बिना तुम भी नहीं फल सकते। मैं दाखलता हूँ और तुम डालियाँ हो। जो मुझ में रहता है और मैं जिसमें रहता हूँ वही बहुत फल लाता है, क्योंकि मुझसे अलग रहकर तुम कुछ नहीं कर सकते। यदि कोई मुझ में नहीं रहता तो वह सूखी डाली की तरह फेंक दिया जाता है। लोग ऐसी डालियाँ बटोर लेते हैं और आग में झोंक कर जला देते हैं। यदि तुम मुझ में रहो और तुम में मेरी शिक्षा बनी रहती है तो तुम जो चाहो मांगो वह तुम्हें दिया जाएगा। मेरे पिता की महिमा इससे प्रकट होगी कि तुम लोग बहुत फल उत्पन्न करो और मेरे शिष्य बने रहो।
श्रोताओं, सत्य का आलिंगन हमसे साहस की मांग करता है और साहस हमें तब होता है जब हम अपने विश्वास में मजबूत बने रहते हैं। ईश वचन हमें अपने विश्वास में मजबूत बने रहने की कृपा प्रदान करे, जिससे हम अपनी निर्भीकता में सत्य की राह का चुनाव करते हुए यीशु ख्रिस्त के प्रेममय मार्ग में आगे बढ़ सकें।
तू है दाखलता, मैं हूँ डाली, पवित्र पिता तू है माली। मैं हूँ डाली, कलम किया हुआ तुझ में रहना।
श्रोताओ, प्रेरित चरित से लिए गए आज के पहले पाठ में हम पौलुस को यीशु ख्रिस्त के सुसमाचार की घोषणा करते हुए सुनते हैं। यह वही पौलुस है जो सौल के नाम से ख्रिस्तियों के लिए खौफनाक मौत का पैगाम लेकर आता था, लेकिन सत्य से मिलन अर्थात जीवित ईश्वर से मुलाकात के उपरांत हम उनमें एक बड़े परिवर्तन को पाते हैं। जिस पुनर्जीवित यीशु ख्रिस्त के अनुयायियों को वह सताया करता था, आज वह उसी यीशु ख्रिस्त का उत्साही प्रचारक बन गया है। दमिश्क की राह में जीवनदायी ईश्वर से उनकी भेंट, जो उनके लिए मन परिवर्तन का कारण बनती है, वे ईश्वर की पुकार को सुनते और उनके जीवंत वचनों पर विश्वास करते हुए उसी सत्य के ईश्वर का अनुसरण करता बन जाते हैं। श्रोताओ, आज का दूसरा पाठ जीवन के सत्य को पुनः प्रकट करते हुए हमें कहता है कि हम पिता ईश्वर की आज्ञा अनुसार उनके बेटे यीशु ख्रिस्त के नाम में विश्वास करने हेतु बुलाए गए हैं। यह हमें अपने विश्वास को अपने वचनों में नहीं बल्कि अपने कार्यों में प्रकट करने की बात कहता है। पौलुस ने अपने मन परिवर्तन के बाद यीशु ख्रिस्त में अपने विश्वास को अपने कार्यों के माध्यम प्रकट किया और वे दुनिया में यीशु के नाम और उनके सुसमाचार के महान प्रचारक बन गए। सत्य से मुलाकात ने उन्हें सत्य को प्रसारित और घोषित करने हेतु उनके हृदय में जोश और उत्साह की आग लगा दी। यही कारण है कि वे कहते हैं कि धिक्कार यदि मैं ईश्वर के सुसमाचार का प्रचार ना करूं। श्रोताओ, यीशु ख्रिस्त में विश्वास और अपने उस विश्वास को प्रेमपूर्ण जीवन में अभिव्यक्त करने की क्षमता हमें यीशु ख्रिस्त के संग संयुक्त रहने की मांग करता है, जिसे यीशु स्वयं हमारे लिए आज के सुसमाचार में व्यक्त करते हैं। यीशु अपने को दाखलता कहते हैं और अपने पिता को बागवान। वहीं वे हमें डालियों की संज्ञा देते हैं। यह हमारा ईश्वर और एक दूसरे के साथ सदैव एकता में जुड़े रहने की बात व्यक्त करता है। पिता एक जिम्मेदार बागवान की भांति अपनी दाखलता की देख रेख करते हैं, जहां हम यीशु ख्रिस्त में डालियों की भांति जुड़े हुए हैं। हमारा दाखलता से अलग रहना अपने में कोई महत्व का नहीं रहता, क्योंकि उनसे अलग हम सूखी डालियों की भांति केवल आग में झोंकने के योग्य रहते हैं। वही यीशु ख्रिस्त से हमारा जुड़े रहना हमें सदैव हरा भरा बनाए रखता है और हम फल उत्पन्न करने के योग्य बनते हैं। इतना ही नहीं, उनमें रहने के द्वारा हमारे द्वारा उत्पन्न किया गया फल सदैव मीठा होता है। श्रोताओ, हमारे जीवन की सच्चाई यही है कि बागवान के रूप में ईश्वर ने हमें इस धरती पर यह जीवन दिया है। यह जीवन एक पौधे की भांति है जो भूमि में केवल तब अपनी जड़ों को मजबूती से बिखेरता है जब जमीन अच्छी और उपजाऊ होती है। अच्छी जड़ों में खड़ा हुआ पौधा पेड़ का रूप धारण करता और अपने फल और छाव के कारण दूसरों को अपनी ओर आकर्षित करता है। इस भांति देखा जाए तो यीशु ख्रिस्त के नाम में हमारा विश्वास हमारे लिए एक उपजाऊ भूमि बनती है, जहां हम अपनी प्रार्थनाओं के द्वारा अपने जड़ों को मजबूत बनाते हैं। वहीं हमारे अच्छे कार्य हमारे लिए वे फल बनते हैं जिसका रसा स्वादन हम नहीं करते वरन दूसरे लोग करते, और हमारे फलों के उपयोग करने के द्वारा वे ईश्वरीय नाम की महिमा गाते हैं। ईश्वर ने अपनी महिमा हेतु हमें जीवन का दान दिया है। वे हमें बुलाते, विभिन्न वरदानों से विभूषित करते और दूसरों के लिए पौलुस की भांति हमें भी भेजते हैं, जिससे हम सत्य को अपने कार्यों के द्वारा घोषित कर सकें। आइए हम माता मरियम से निवेदन करें कि वे हमें अपने बुलावे और भेजे जाने के अर्थ को समझने में मदद करें, जिससे हम विश्वास में सत्य के वाहक बन सकें, जो न केवल हमें वरन दुनिया की जातियों को स्वतंत्र होने में मदद करती है।
तू है दाखलता, मैं हूँ डाली, पवित्र पिता तू है माली। डाली, कलम किया हुआ तुझ में रहना चाहो। तेरे बगैर कुछ नहीं कर सकता हूं मैं हूं डाली, चुना हुआ तेरे प्यार में रहना चाहो।
आप वैटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है समाचार। 1 मई को कलीसिया बढ़ाई संत जोसेफ का पर्व मनाती है, जो मजदूरों के संरक्षक माने जाते हैं। संत पापा फ्रांसिस ने आज के ट्वीट संदेश में लिखा, संत जोसेफ का कार्य हमें स्मरण दिलाता है कि स्वयं ईश्वर मानव बनने में काम का तिरस्कार नहीं किए। आइए हम काम करने वाले संत जोसेफ से प्रार्थना करें कि वे हमें दृढ़तापूर्वक यह व्यक्त करने का रास्ता पाने में मदद दें कि कोई भी युवा, कोई भी व्यक्ति और कोई भी परिवार बिना काम के ना रहे। संत पापा ने दूसरे ट्वीट में रोजरी माला विनती के द्वारा महामारी के समय माता मरियम से विशेष प्रार्थना करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा, मई महीने में हम माता मरियम की ओर नजर उठाएं, वे हमारी सांत्वना एवं निश्चित आशा हैं, और आइए हम इस समय के संकट का सामना करने के लिए एक साथ रोजरी विनती करें एवं आध्यात्मिक परिवार में एक बने रहें। ज्ञात हो कि आज संत पापा फ्रांसिस वैटिकन के संत पेत्रस महागिरजाघर में मई महीने के इस रोजरी माला विनती का उद्घाटन रोम समय अनुसार शाम 6 बजे करेंगे एवं महामारी के अंत के लिए विशेष प्रार्थना करेंगे। शनिवार को मडागास्कर के मोरोंदावा धम प्रांत स्थित संत जोसेफ उप महागिरजाघर की आशीष संपन्न हुई। संत पापा फ्रांसिस ने भी एक वीडियो संदेश के माध्यम से विश्वासियों के साथ समारोह में भाग लिया। उन्होंने वीडियो संदेश में कहा, मैं इस कार्य के लिए आप सभी को बधाई देता हूं, जिसको आप आगे बढ़ा रहे हैं, और मैं सभी शैक्षणिक, सामाजिक एवं धार्मिक कार्यों के लिए बधाई देता हूं। संत पापा ने धम्म प्रांत की उस परियोजना की खूब सराहना की, जिसमें एक नहर बनाया गया है ताकि स्थानीय फसल के लिए सिंचाई की सुविधा दी जा सके। नहर 50 किलोमीटर लंबा है और इससे 2000 हेक्टेयर से अधिक बड़े क्षेत्र में लगे फसल की सिंचाई की जा सकेगी। संत पापा ने अपने संदेश के अंत में इस परियोजना एवं मियां द्रिवाजो के महागिरजाघर पर ईश्वर की आशीष की याचना की। उन्होंने कहा, मैं संत जोसेफ से प्रार्थना करता हूं कि वे आपकी रक्षा करें। मैं इस नए महागिरजाघर की आशीष के लिए आप सभी के साथ हूं। ईश्वर आप सभी को आशीष प्रदान करें। मियां द्रिवाजो मोरोंदावा धम्म प्रांत से 300 किलोमीटर दूर है। धम्माध्यक्ष ने कहा कि यह भौगोलिक दूरी स्थानीय लोगों को कलीसिया से दूरी महसूस कराती थी। भारत में कोविड-19 महामारी के कारण गंभीर हालत को देखते हुए इंग्लैंड एवं वेल्स के कार्तिक धम्माध्यक्षों ने सभी पीड़ितों के प्रति अपनी गहरी संवेदना प्रकट की है। नॉटिंघम के धर्माध्यक्ष पैट्रिक मैकिनी ने लिखा है कि वे इस एशियाई देश से आने वाले समाचार से अत्यधिक दुखी हैं और याद करते हैं कि उनके धर्म प्रांत में कई परिवार हैं जो भारत के हैं और उनके प्रियजन भारत में रहते हैं। उन्हें सांत्वना देते हुए धर्माध्यक्ष ने लिखा है, इस भयानक समय में मैं आपके मित्रों, परिवारों और देश जिसको आप प्यार करते हैं अपनी प्रार्थनाओं में लाता हूँ। धम्मदश ने नॉटिंघम के विश्वासियों का आह्वान किया है कि वे भारत के सभी पीड़ित, बीमार लोगों, मरने वालों, शोकित प्रियजनों और जो लोग साहसपूर्वक उनकी देखभाल कर रहे हैं उनके लिए शुक्रवार को उपवास एवं प्रायश्चित का दिन रखें। दुमका धम्म प्रांत में कोविड-19 से 10 दिनों के अंदर 5 पुरोहितों के मरने पर गहरा शोक व्यक्त करते हुए धम्मदक्ष माकिनी ने उनकी आत्मा की अनंत शांति के लिए प्रार्थना की है।
संत पापा फ्रांसिस ने शुक्रवार को एक नया प्रेरितिक पत्र मोटू प्रोप्रियो जारी किया है जो वाटिकन सिटी राज्य में न्यायिक प्रणाली को संशोधित करता है। अब तक कार्डिनलों और धर्माध्यक्षों की केवल कोर्ट दी कसासियों ने वाटिकन के सुप्रीम कोर्ट द्वारा जांच की जा सकती थी जिसकी अध्यक्षता एक कार्डिनल करते हैं। नए मोटू प्रोप्रियो में संत पापा पहले स्तर के न्यायालय द्वारा कार्डिनलों और धर्माध्यक्षों की जांच करने की अनुमति देते हैं, इस शर्त के साथ कि मामलों को परमाध्यक्ष द्वारा अधिकृत किया जाना है। वाटिकन मजिस्ट्रेटों द्वारा अपराधों के आरोपी कार्डिनलों और धर्माध्यक्षों को अब कार्डिनल की अध्यक्षता वाले कोर्टे दी कासाजियोने के बजाय, जैसा कि अब तक था, अब वाटिकन सिटी राज्य के न्यायालय द्वारा सुनवाई की जा रही है। संत पापा फ्रांसिस का वाटिकन सिटी राज्य के न्यायिक आदेश पर कानून के अनुच्छेद 24 को समाप्त करने का निर्णय कलीसिया के सभी सदस्यों की समानता के सिद्धांत पर आधारित है। वाटिकन सिटी राज्य के भीतर अपराधों के आरोपी कार्डिनलों और धर्माध्यक्षों की सुनवाई के लिए कोर्ट दी कासाजियोने था, वह वाटिकन का सुप्रीम कोर्ट है और ऐसे मामलों में 3 कार्डिनल और 2 या अधिक सहयोगी न्यायाधीश शामिल होते हैं। जब नया मोटू प्रोप्रियो प्रभाव में आता है, इसके एक दिन बाद ओसर्वातोरे रोमानो में प्रकाशन के माध्यम से प्रचारित किया जाता है। कार्डिनल और धर्माध्यक्ष सामान्य अपराधों के लिए याचिका दायर करते हैं, इसलिए अन्यों की तरह और एक ही वाटिकन कोर्ट द्वारा 3 स्तर के अनुसार निर्णय लिया जाएगा। और वाटिकन में 4 मई की दोपहर को होने वाले एक समारोह के दौरान 34 नए पोंटिफिकल स्विस गार्डों की भर्ती की शपथ ली जाएगी। कोविड-19 महामारी के कारण संक्रमण से बचने के लिए वर्तमान सुरक्षा नियमों के अनुसार यह दर्शकों के बिना होने वाला समारोह होगा। समारोह में केवल शपथ लेने वाले गार्ड्स के परिवार ही शामिल होंगे। नए स्विस गार्ड की भर्ती और उनके परिवारों को पिछले साल बधाई देते हुए संत पापा फ्रांसिस ने कहा, आपके परिवार के सदस्यों की उपस्थिति स्विस कैथोलिकों की परम धर्मपीठ के प्रति सम्मान के साथ साथ नैतिक शिक्षा और अच्छे उदाहरणों को व्यक्त करती है। माता पिता ख्रिस्तीय विश्वास और अपने पड़ोसी के प्रति उदार सेवा की भावना अपने बच्चों को देते हैं। 6 मई का कार्यक्रम सुबह 7:30 बजे संत पेत्रुस महागिरजा घर में वाटिकन सचिव कार्डिनल पियेत्रो पारोलिन की अध्यक्षता में पवित्र मिस्सा समारोह से शुरू होगा। शाम 5 बजे संत दमासियोस प्रांगण में शपथ ग्रहण समारोह होगा और खराब मौसम होने पर यह संत पापा पॉल 6 सभागार में स्थानांतरित किया जाएगा। पोंटिफिकल स्विस गार्ड दुनिया की सबसे छोटी सेना है। इसकी स्थापना 1506 में संत पापा जूलियस द्वितीय द्वारा की गई थी। वे संत पापा की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार हैं और इसमें प्रेरितिक भवन की सुरक्षा भी शामिल है। परमाध्यक्ष का स्थान खाली होने पर कार्डिनल मंडल की भी रखवाली करती हैं। और इसी के साथ वाटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। अब तमिल में प्रसारण होंगे। नमस्कार।